हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात के वक्त अनाही ने अपने फोन को संभाला। उसने जैसे ही देखा कि काशी ने उसे इतने सारे कॉल किए थे, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और फिर खुद से बोली, इन सब के चक्कर में मैं माँ को तो भूल ही गई, वो सुबह से मुझे कॉल कर रही थी, क्या मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए? अनाही अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। आखिर में उसने हिम्मत करते हुए काशी को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर बाद ही काशी ने कॉल उठाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, सुबह से कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? और अब तो विहा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कल तो दिन में उससे बात की थी और वो बहुत अकेली लग रही थी मुझे, इसलिए मुझे लगा आज भी मैं उसे कॉल कर लूँ, उसे अच्छा लगेगा, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, कहाँ गई है वो? अनाही ने मुश्किल से अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोककर धीमी आवाज़ में कहा, वो मम्मी, एक्चुअली विहा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया, तो इस वक्त वो हॉस्पिटल बेड पर गहरी नींद में सोई हुई है, बस इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पा रही है और शायद अब दो तीन दिन तक नहीं उठा पाएगी। ये बोलते बोलते ही अनाही की हिम्मत जवाब दे गई, फिर वो आंखें भिगोकर सिसक पड़ी। उधर काशी ने जैसे ही ये सुना था, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। राधे श्याम जो उसके सामने ही बैठे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि काशी अचानक ही चौंक गई है, तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? काशी ने भरी आंखों से राधे श्याम की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरी बच्ची। राधे श्याम को कुछ समझ नहीं आया, उसने काशी के हाथ से फ़ोन लिया और फिर अपने कान से लगाते हुए बोला, क्या हुआ अनाही, तुम ठीक हो ना? अनाही ने दर्द का घूंट भरते हुए गहरी सांस के साथ कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन विहा। राधे श्याम का चेहरा एक पल में बदल गया, फ़ोन उनके हाथ में कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी वही पिता वाली मजबूती थी। माही बेटा, बोलो साफ साफ, विहा को क्या हुआ, बच्चा मतलब? अनाही ने गले में अटके दर्द को निकलते हुए कहा, पापा, मिसकैरेज हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, जब तक हम उसे हॉस्पिटल लाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डॉक्टर ने सब कुछ कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं बच पाया, विहा भी बेहोश है, सिडेटिव दी गई है, वो बहुत टूट गई है पापा, मैं उसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रही। उधर काशी अब पूरी तरह टूट चुकी थी, वो सोफे पर बैठी बैठी ही फूट फूट कर रोने लगी। राधे श्याम ने फ़ोन एक तरफ रखा और काशी को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, शांत हो जाओ काशी, हमें मजबूत रहना है, हमारी बच्ची को हमारी ज़रूरत है। फिर उन्होंने फ़ोन फिर से कान से लगाया, माही, हम अभी निकलते हैं, रात हो गई है लेकिन हम गाड़ी लेकर सीधे हॉस्पिटल आ रहे हैं, तुम बताओ कौन सा हॉस्पिटल है, और वेदांत वो कैसा है? अनाही ने रोते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल पापा, वेदांत जी भी बहुत टूटे हुए हैं, वो खुद को बहुत दोष दे रहे हैं, वो मीटिंग में थे जब विहा ने कॉल किया था, वो फ़ोन नहीं उठा पाए। राधे श्याम ने गहरी सांस ली, ठीक है बेटा, हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, तुम बस विहा के पास रहना, उसे अकेला मत छोड़ना और खुद को भी संभालो, हम आ रहे हैं। काशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे देखकर राधे श्याम ने उसका मुंह अपनी हथेली से ढक लिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा, चलो तैयार हो जाओ, हमारी बेटी को हमारी ज़रूरत है और विहा को अपनी माँ बाप की। काशी ने सिर हिलाया, दोनों ने जल्दी से कुछ कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। राधे श्याम ने सबसे पहले ट्रेन की टिकट करवाई और फिर दोनों टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। पूरे रास्ते काशी अपनी बच्ची की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। वहीं अनाही ने रूहान के पास जाकर बेंच पर बैठते हुए कहा, चौहान जी, आप स्टेशन से मम्मी पापा को रिसीव करने चले जाना, उनको गुजरात के बारे में कुछ पता नहीं है और यहाँ आने में भी उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। चौहान ने तुरंत कहा, आप परेशान मत होइए, उन्हें मैं ले आऊँगा। इतना बोलकर चौहान ने प्यार से अनाही का सर अपने कंधे पर रखकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, आप सुबह से भाग दौड़ कर रही हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वेदांत भाई को कमरे से बाहर भेज दीजिए और आप उस कोच पर आराम कर लीजिए। अनाही ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, वेदांत विहा को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमें बाहर ही रहना चाहिए। चौहान ने फिर कुछ सोचकर कहा, मैं यहाँ एक रूम खाली करवा लेता हूँ ना, आप उस पर रेस्ट कर लेना, वैसे भी यहाँ जो रेस्ट रूम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं थोड़ी देर पहले ही देख कर आया था, बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी, मैं वैसे कमरे में बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ और आपको भी नहीं रहने दूंगा, वरना आप ही बीमार हो जाओगे, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। अनाही बस चुपचाप रूहान की बातें सुन रही थी और रूहान के पास यही एक दवाई थी उसकी परेशानी दूर करने की। जब जब भी वो ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, रूहान बस अपनी बकवास शुरू कर देता है, उसके दिमाग में जो कुछ आता है बस बोलना शुरू कर देता है और अनाही उसे सुनते सुनते अपना दर्द भूल जाती है, कुछ देर के लिए ही, लेकिन उसे सुकून मिलता है। चौहान ने फिर अनाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं उन लोगों को लेने राजस्थान ही चला जाता, वहाँ से भी आने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ट्रेन का सफ़र कैसा लगता है?
मुझे तो बहुत इचिंग सी होती है। सब लोग एक साथ सो रहे होते हैं, कोई खराटे लेता है तो कोई बस गंदी सी गैस छोड़ता रहता है। मुझे बहुत ही उल्टी जैसा फील होता है, इसलिए मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। वैसे आपको मेरी गाड़ी कैसी लगती है? मुझे भारत कार का बहुत शौक है। जब आपका मन हो मुझे गिफ्ट देने का तो इस बार मुझे भारत कार गिफ्ट कर देना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और मेरा फेवरेट कलर लैवेंडर है, मुझे उसी कलर की गाड़ी देना। अनाही बस रूहान की बातों में धीरे धीरे सिर हिला रही थी, बाकी जवाब देने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। थोड़ी देर बाद अनाही ने रूहान की गोद में अपना सिर रख लिया और अपने पैरों को बेंच पर सीधा कर लिया। रूहान ने भी उसके मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे लगता है उन्हें यहाँ आने में वैसे भी रात के 2:30 बज जाएंगे, तब तक मैं आपके पास रहता हूँ और फिर उन्हें लेने चला जाऊँगा। आपका सर दर्द कर रहा है क्या? इतना बोलकर रूहान आहिस्ता से अनाही का सर दबाने लगा। अनाही ने भी अपनी आँखें बंद कर ली, उसे रूहान के सर दबाने से बहुत आराम मिल रहा था। निनानी हाउस में डिनर के वक्त राधिका सबको खाना खिला रही थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह चुके थे। रवि ने अनंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज आपकी चाची जी को क्या हो गया है? जब निवेदिता चाचा ने ऐसा बोला ना कि उनको थोड़ी कम भूख है, क्योंकि शाम को उन्होंने स्नैक्स खा लिए थे और वो भी राधिका चाची के साथ बैठकर, मुझे इतना गहरा सदमा लगा था ना, मैं बता नहीं सकती। अनंत ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तुम यहाँ चिपको मत, मेरी माताश्री मुझे ही देख रही हैं, थोड़ी देर में ही बेशरम का टैग मिल जाएगा। पता नहीं है विवाह के वक्त कितना बखेड़ा खड़ा किया था, रवि ने मुंह बनाते हुए कहा। कमरे में जाते ही तो खुद चुंबक बन जाते हो और मैं यहाँ सिर्फ हाथ पैर क्या, हाथ भी नहीं रख सकती हूँ, डबल स्टैंडर्ड के लोग। अनंत ने मासूमियत से एक बार माधवी की तरफ देखा, जो आंखें बड़ी बड़ी किए उन्हें देख रही थी, और फिर गहरी सांस लेकर खाना शुरू कर दिया। माधवी ने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, वैसे आज तुम्हारे दोनों बेटे बहू को कोई नहीं नजर आ रहा, सब लोग कहाँ गए हैं?
निवेदिता ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था उनसे कि कम से कम विवाह को तो मेरे पास रहने दो, पर अनाही बता रही थी कि वेदांत और विहा तो कहीं घूमने गए हैं और वो और रूहान ऑफिस में बिजी हैं और आज उन्हें वहीं रहना है। आगे मैं भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाई। अनाही बहुत जल्दबाजी में लग रही थी, उसने जल्द ही कॉल कट कर दिया था, मुझे पूछने का मौका भी नहीं मिला।